ओम शांति। टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स में हिंदी वर्ड जो देखा है वो संघर्ष है, पर वो प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से टॉपिक ही इंग्लिश में दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप। तो कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ड को लैटिन में कॉन और फ्लिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉन मतलब टुगेदरनेस, एक साथ, दो चीज होना चाहिए एक कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए, और फ्लिक्स मतलब टू स्ट्राइक, मतलब जो भी लड़ाई या झगड़ा जो भी होता है उसको बोलते हैं। हाँ, खिटपिट होता है, तुतुमे में होना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो के बीच में या दो ग्रुप के बीच में या एक ग्रुप के बीच में लड़ाई, उसमें अपना ओपिनियन को, अपना जो अपना विचार को सामने रखने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम जिद करके कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। उसमें हम सामने वाले को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मैपन ज़्यादा हवी रहते हैं उस टाइम। तो कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे देखा गया है, शुरू से हम जितने भी हमने जन्म लिया है, हमने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स किए होंगे, और हमारा संस्कार के वजह से हम अलग अलग संस्कार का टकराव के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं, और जो जिसने जितना ज़्यादा जन्म लिया है उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स किए होंगे, और फिर संगम में आके उसका चुकतू करने का समय आ गया। हिस्ट्री में भी देखा गया है कि हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। राजाओं का देखा है कि लड़ाई किस लिए हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ही हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी को लेके या कुछ भी कारण से। और हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स वाला बात इतना भर गया है कि हर चीज़ में हम देखना पसंद करते हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है या मूवी होता है, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहता है तो फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद फिर लास्ट में जब दोनों ग्रुप में मिलन होता है तब खुशी मिलता है। तो ये के कॉन्ट्रास्ट हो गया हमारे बुद्धि में, इसी वजह से बाबा भी हमें हर चीज़ का कॉन्ट्रास्ट देके समझाते हैं, तभी हमारे समझ में बैठते हैं। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे एक फॉल्स मैं होता है, एक ट्रू मैं होता है, और दोनों के बीच में एक लड़ाई चलता है, कौन सा करे, जो सच है उसको माने या जो हमारा देवभान का सच्चाई जो होता है वो माने। तो वो संस्कार के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा होता है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के साथ। तीसरा ये भी हो सकता है एक व्यक्ति और एक ग्रुप के साथ, सोसाइटी के साथ हो सकता है, दो ग्रुप के साथ भी हो सकता है, हम नेचर के साथ भी करते हैं संघर्ष टाइप करते हैं, और हाँ दो धर्म के बीच में भी होता है, और ये रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो ये तो व्यक्ति व्यक्ति में बताया गया है, दूसरा जगह के हिसाब से भी होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दो राज्य में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, रूममेट्स में हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर रूममेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आगे है कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप कौन सा हो सकता है? पति पत्नी में, बहुत ही ज्यादा होता है। परमात्मा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी करेंगे। और सास बहू में भी होते हैं, माँ बाप और बच्चे में भी होते हैं, भाइयों में होते हैं, बाप बेटा में होते हैं, कोई दो दोस्त के बीच में होते हैं, कलीग्स में होते हैं, पड़ोसन में। हाँ, तो बहुत कुछ होता है प्रॉपर्टी को लेके, किस चीज के से लेके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, उसका भी अलग से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे हम सोचे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, अगला कुछ और समझना चाहते हैं, पर यहाँ पे हम दूसरे का संस्कार को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर दूसरे का संस्कार को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा क्या है, पोअर कम्युनिकेशन, जैसे हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, किसी का लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, या तो किसी का बोलने का तरीका सही नहीं हुआ। हाँ, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि हमने किसी और को बोल के गया, वो कम्युनिकेट करते समय कुछ और बोल दिया है, तो ये भी हो जाता है। तीसरा हो सकता है लैक ऑफ प्लानिंग। अगर हमने प्लानिंग ठीक से नहीं किया, बाबा ने हमें जैसे सिखाया, बाहर की दुनिया में तो नहीं हो पाता है, पर हम बाबा ने हमें सिखाया कि कुछ बोलने से पहले सोचो पहले। तो सोचने के लिए जैसे हम सोचते हैं कि उस आत्मा का संस्कार को पहले सोच ले तो फिर उसके हिसाब से बोले, पहले प्लान करे। बाबा कहते हैं पहले उसको उसका तारीफ करो और फिर करेक्शन करने जाओ, अगर करेक्शन करना भी है, कुछ बोलना भी है। हमारा जो संस्कार है उसके हिसाब से हम झट बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं है, तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आगे। और हो सकता है कि असंतुष्टता, जब सामने वाला से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हर बात बुरा लगता है और कॉन्फ्लिक्ट्स में हम आ जाते हैं। एक हमारे में एक्सेप्टेंस का पावर थोड़ा कम रहता है, हम सामने वाला को एक्सेप्ट कम कर पाते हैं, उसका संस्कार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। अगला है एक्सपेक्टेशंस, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करते हैं, वही करे वही सुधरे और खुद के तरफ नहीं देखते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो जाता है। नेक्स्ट है पुअर स्टाफ सिलेक्शन, जैसे वर्क प्लेस पे कहा जा सकता है, इंटरव्यूज होते हैं, आजकल इंटरव्यूज जो होते हैं क्वेश्चंस देते हैं, पूछते हैं आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया तो आप करोगे क्या, तो उससे क्या है बिहेवियर का एक अनुमान हो जाता है। तो अगर ठीक से परख नहीं पाया तो हो सकता है कि वो वहां पे फिट नहीं हो और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांस रहता है। तो स्टाफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस। दो आत्मा के बीच या दो ग्रुप के बीच जहां पे भी फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांस बहुत ज्यादा है। एक एनवायरनमेंट भी नेगेटिव है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांस ज्यादा रहता है। अगला है ईगो डिफरेंस इन संस्कार में, जो डिफरेंस है, तो अहंकार आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर होगा। तो ये था कारण। अब है कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू कैसे होता है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, शुरू जब होता है हम सोचते कुछ है और करते कुछ और है। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारे घर में कुछ छोटा मोटा कुछ मनमुटाव हो रहा है, उसी टाइम पे कोई गेस्ट आ गया, तो हम गेस्ट को वेलकम जरूर करते हैं पर मन से नहीं करते हैं। मन से ऐसे लगता है अभी इसको आना था क्या, राइट टाइम पे नहीं आया। तो उसी समय हम, वैसे तो हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा से बिहेव किया है, पर अंदर से हमने मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है। दूसरा है, जब संस्कार अलग अलग होते हैं, अलग अलग तो जरूर होते हैं, पर गलत संस्कार जब ज्यादा होते हैं तो फिर शुरू जरूर होगा, हर मिनट में शुरू होता है। तीसरा है, जब अटैचमेंट होता है, जितना किसी के साथ हमारा अटैचमेंट होगा उतना हमारा एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है, हम अगर बहुत दिन से किसी आत्मा के प्रति कुछ अंदर स्टोर करके जमा करके रखा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि पहले से ही हमने नहीं बोल के कुछ नहीं करके अंदर में जमा कर रखा है, उसको डिलीट नहीं करके अंदर में स्टोर कर रखा है और छोटा सा चिंगारी लग गया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। अगला है, हमारा आदत है व्यक्ति को देखने का, कर्म को नहीं देखते हैं और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और अहंकार तो जरूर सबसे आगे कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बनता है। अगला है, किसी और को नीचा दिखाने का जब हमारा प्रयास रहता है तब कॉन्फ्लिक्ट आने का चांस रहता है। परचिंतन प्रदर्शन, जो बाबा कहते हैं नहीं करो, हम उसको सबसे पहले करते हैं और बहुत जन्मों से हमारा आदत भी पड़ा हुआ है। खुद को चेकिंग कम करते हैं, करते ही नहीं है, अब करना सीखा है हमने, और दूसरे का चिंता करते करते उसके बारे में हम अनुमान लगा के डिसीजन ले लेते, उसने ऐसे ही किया होगा, अभी ऐसे ही कर रहे होंगे, या किसी को जाके मेरे बारे में कुछ बोल रहे होंगे। तो ये जब भर लेते हैं हम अपने दिमाग में तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने का चांस रहता है। अगला है, बाबा के ज्ञान के हिसाब से जो कार्मिक अकाउंट है, जिसके जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होगा वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही, वो हमारे ऊपर है हम कैसे उसको टैकल करें। और लास्ट है, एक मेन संस्कार हमारा दो आत्मा के बीच किसी में भी हो तो, डोमिनेटिंग नेचर अगर हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है। तो ये था शुरू होने का। ठीक से नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस रहता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का। अभी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के समय में आत्मा की स्थिति क्या हो रहता है। सोचिए हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा स्थिति कैसे रहेगा। सबसे पहले हमारा आदत रहता है सामने वाला को ब्लेम करने का, मैं ठीक हूं वही सब गड़बड़ कर रहा है। तो ब्लेम करने का आदत रहता है हमारे बुद्धि में, वही रहता है कि उसी ने शुरू किया, उसी के वजह से हुआ है। अगला है, हम उससे एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं उस समय कि जो भी करे वही करे, उसने शुरू किया वही माफी मांगे। नेक्स्ट स्टेप, जब भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पास्ट जो भी जमा हुआ है वो एक एक करके हमें याद आ जाता है, एकदम कैसेट की तरह एक के बाद एक, उसने उस दिन ऐसे किया था, उस दिन ऐसे किया था, पूरा हिस्ट्री आ जाएगा और वो आते ही और भी बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा शक्ति भी घट जाती है, और जब शक्ति घट जाते हैं तो और भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लग जाते हैं। हमारा अहंकार जो है वो फुल फोर्स में आ जाता है उस समय, और सामने वाला को हम काबू पाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको उसके ऊपर जीते, जीत करके फिर ऐसे सोचते सोचते काबू पाने के लिए हम बहुत बड़ा झगड़ा में आ जाते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा को फिर बहुत चीज में कन्वर्ट हो सकता है, जाके कभी कभी तो मर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ कुछ घटनाओं में ये भी देखा गया जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं खुद का नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं कोई कोई, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाता है। तो ये था आत्मा की स्थिति जब कन्फ्लिक्ट होता है, और कन्फ्लिक्ट जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या स्थिति रहता है। आत्मा का एक नेचर है, ज्यादा देर दुख में नहीं रह पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको भूल के सुख में आ जाए, तो दुख को भूलने की कोशिश करते हैं। तो दुख को भूलने के लिए हम बाद में क्या है, बहुत कुछ सोचते हैं कि इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए था, और हमारा जो इनर कॉन्शियस है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो अपने आप में फिर जस्टिफाई भी करते रहते हैं, नहीं उसने भी तो ऐसे बोला था, तो बाद में ये स्थिति रहता है, थोड़ा सा पछतावा भी रहता है कि मैं वहीं पे, जैसे ज्यादातर हम ब्राह्मणों को होता है कि बाबा का ज्ञान उस टाइम हमें याद नहीं आया, वो झट से हमें आ जाता है कि उसी टाइम में स्टॉप कर देती तो ये इतना बड़ा नहीं होता, मैंने गलती कर लिया और फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया। नेक्स्ट होता है जितना भी जो भी उस कन्फ्लिक्ट के समय हुआ था, एक एक चीज हमें याद आने लग जाता है, पहले उसने ये बोला था, फिर मैंने ये बोला, फिर ये हुआ, वो एकदम घूमते रहता है, पूरा संकल्प चलने लग जाता है। और हम बाहर से हम खुश दिखाई देने की कोशिश करते हैं पर अंदर में बहुत दर्द रहता है, और कभी कभी हम माफी के लिए सोचते हैं कि माफी मांग ले, पर फिर ये भी सोचते हैं कि नहीं उसको वो ही मांगे पहले। और जो गांठ लग गया है इस रिश्ते के बीच उसको खोलने की कोशिश करते हैं, बस पर उसको खोलने का चक्कर में कन्फ्लिक्ट कभी कभी बढ़ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं बीती को फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि गांठ खोलने जाए तो फिर हम जो घटना हुआ है उस पे काम करने के लग जाते हैं, तो फिर उस आगे वाला आत्मा को भी रिमाइंड कर देते जो जो घटना हुआ है, इसलिए गांठ को नहीं खोल के हमें आगे बढ़ना है, उसको भूल के आगे बढ़ना है। तो आत्मा का उस समय का स्थिति पता चल गया है, बाद की स्थिति पता चल गया है, अभी हम जाएंगे इसको कैसे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें, सॉल्यूशन क्या निकाले, या इसको प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहले जो बीत गया है वो हम मन के अंदर भर के नहीं रखें, उसको फुल स्टॉप लगा दे या डिलीट कर दे, क्योंकि जब जमा करके रखते हैं तभी छोटे से चीज में हम चीज को बड़ा बना लेते हैं। दूसरा क्या है, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तब कम बात करने में फायदा है, क्योंकि उस टाइम हमारा मन की स्थिति सही नहीं रहता है, तो ज्यादा जितना ज्यादा बात करेंगे इतना कॉन्फ्लिक्ट्स में आने का चांसेस रहता है। जैसे कारण एक बताया कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हम नहीं करते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन का हम प्रयास करें, खुद डायरेक्ट किसी मैसेज देना है तो कुछ डायरेक्ट खुद डायरेक्ट बोल के जाए, किसी के थ्रू नहीं बोले, ताकि मिसकंसेप्शन नहीं हो। चौथा है ड्रामा का ज्ञान, हमें पता है कि हमने बहुत हिसाब किताब जमा कर लिया है, तो ये सब परीक्षाएं तो आएंगे हमारे सामने, तो पहले से हम तैयार रहे, जो बेहोशी स्थिति में हम रहते हैं वो होश में कॉन्शियस रह के हम इसको करें। नेक्स्ट है, जिसके साथ अटैचमेंट है उससे डिटैच होने की कोशिश करें, ताकि हमारा एक्सपेक्टेशंस कम हो जाए उस आत्मा से। अगला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्टिफिकेशन नहीं देना है। हम अपने को सिद्ध करने के लिए जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं और सामने वाला आत्मा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्यों ना हम जस्टिफिकेशन नहीं, हम गलत नहीं है, फिर भी हम जस्टिफिकेशन नहीं दे के हम एक्सेप्ट कर लें, हाँ ठीक है मैं गलत हूं, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। जो हम मिसअंडरस्टैंडिंग में देखा था कि संस्कार, अगला का संस्कार, सामने वाला का संस्कार को हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम सामने वाला संस्कार को समझे, हमें ज्ञान है तो हम, हमें ये पता है कि सबका अलग अलग पार्ट है, अलग अलग संस्कार है, मेरे में भी कुछ बुराई है, तो वो सोच के हम एडजस्ट करें, अपने अंदर पावर को बढ़ाएं योग से, और वो पावर सबसे ज्यादा जरूरत है सहन शक्ति का, समाने की शक्ति का, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हम किसी और को बोलने के लिए पेट में दर्द होने लग जाते हैं, और पावर टू एडजस्ट, और अपने आप को मोल्ड करने का, और उसके लिए हम अपने आप को निरंतर चेकिंग करना जरूरी है, सेल्फ चेकिंग और चेंज करने की जरूरत है। जितना अपने आप को चेक करते जाएंगे, चेंज करेंगे, उतना हम सामने वाला आत्मा को शुभावना, शुभकामना, रहम दिल बनना, ये सारा कुछ कर सकते, नहीं तो बुद्धि में वो सब पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। अगला पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग। जो प्लान, बिगर प्लान किए, हमारे मुख से जो निकलना है निकल जाता है, और बाबा के बात थे, बाबा जो ज्ञान दिया है वो तो याद रखना ही है, जो मीठा बोलना है ये हमारे ध्यान में रहे। और लास्ट पॉइंट है निस्वार्थ सेवा। किसी का सेवा करे तो निस्वार्थ भाव से ही करे, कुछ पाने का इच्छा से नहीं करे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएगा, क्योंकि सेवा में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। एक और पॉइंट्स है, जैसे बाहर से हम एक होते हैं, अंदर से एक होते हैं, तो अंदर बाहर हम एक होने होना चाहिए, जो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी है। और कुछ भी हो जाए, अगर हमसे गलती भी हो जाए, नहीं भी हो, तो माफी मांगे, माफ कर दे। और अभी लास्ट पॉइंट है, हमारा जो विशेषता है उसको पकड़ के रखे। हम दूसरे का संस्कार को देख के खुद का जो विशेषता है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे प्रकाशमणि दादी ने हमेशा बोला कि दादी कभी झूठ नहीं बोलते थे, बोलते मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूं, और दादी के आगे कितने आत्माओं ने झूठ बोला होगा, पर उन्होंने कभी अपना विशेषता को चेंज नहीं किया, पर हम प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो एक इंग्लिश में कहावत है, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर पार्टिसिपेशन। जब दो जने में होता है तभी वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारे हाथ में है, हम पार्टिसिपेट नहीं करें, वहीं पे स्टॉप कर दे, एक्सेप्ट कर ले, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। आज का टॉपिक है हार्मोनी इन रिलेशनशिप्स। ऑलमोस्ट सिस्टर ने पूरा कवर कर दिया यही टॉपिक, संबंधों में सामरस्यता। सो कल मुरली में बाप, मेरा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है साउथ इंडिया का, सो थोड़ा एडजस्ट करना आप सभी। कल मुरली में बाबा ने कहा, बेहद का बाबा आया हुआ है बंधनों, दुख की बंधनों से छुड़ाकर सुख की संबंध में ले जाने। सो बाबा ने क्लियरली बताया कि रिलेशनशिप का डेफिनेशन है सुख, रिलेशन संबंध ही सुख है। माना सुख माना जहां, रिलेशन माना है जहां प्यार और सुख रहता है, माना सिंक्रोनाइज ऑफ थॉट्स. सो उसमें और हारमोनी इन रिलेशनशिप्स की बात ही नहीं है. रिलेशनशिप माना है हारमोनी. हमारा आज की दुनिया में डे टू डे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पेन ज़्यादा है रिलेशनशिप्स में. एक छोटा सा स्टोरी से हम देखे तो एक एलिमेंट्री स्कूल में मैथ्स टीचर ने एक स्टूडेंट को अप्रोच करके एक प्रश्न पूछता है और वो स्टूडेंट को मैंगोस इतना अच्छा लगता है, इज वेरी फाउंड ऑफ मैंगोस. सो पूछता है कि एक छोटा सा प्रश्न पूछता है लाइक आपको एक एप्पल दिया एंड इसके बाद और एक अनदर एप्पल दिया और इसके ऊपर और एक एप्पल दिया और आपके पास कितना एप्पल्स है. तो छोटू बच्चों को पूछता है. सो छोटू ने सोचते काउंट करते और हवा में देखते और टीचर को ऊपर से नीचे देख के आंसर कहते हैं कि 4 एप्पल्स. टीचर को लगता है अरे ये छोटा सा क्वेश्चन है बट ही इज वेरी कैपेबल ऑफ आंसरिंग. सो फिर से एक बार पूछेंगे बोल के फिर से रिपीट करते वही क्वेश्चन को. एप्पल दिया, दूसरा एप्पल और इसके ऊपर और एक एप्पल दिया और क्या आपके पास कितना एप्पल्स, बोले तो सेम आंसर आ जाते कि तो फिर से सोच के 4 एप्पल्स बोलते. फिर गुस्सा आता है टीचर को और सोचते कि नहीं नहीं ये जो बच्चों को मैंगोस बहुत अच्छा पसंद है ना इसलिए मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन को बोल के आपको एक मैंगो दिया और इसके ऊपर अनदर मैंगो और उसके ऊपर और एक मैंगो दिया आपके पास कितना मैंगोस है. ये स्टूडेंट के चेहरे में थोड़ा स्माइल आ जाते हैं मैंगोस पसंद है ना. सो उन्हों काउंट करके आंसर बताते कि 3 मैंगोस. अच्छा फिर टीचर को लगता है देर इज सम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अभी उनको कॉन्सेंट्रेशन सेट हो गया फिर से मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को पूछता हूँ बोल के फिर से पूछता है कि आपको एक एप्पल दिया अनदर एप्पल एंड इसके ऊपर अनदर एप्पल सो हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव. फिर से आंसर बोलता है कि 4 एप्पल्स. सो टीचर ने बहुत गुस्सा आता है अरे फिर से वही आंसर दे रहे क्या. बहुत गुस्सा करते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर और उतना डरते हैं और आंसू भी आ जाते हैं उस स्टूडेंट को. फिर से इतना डम है इतना छोटे से आंसर को भी क्वेश्चन को भी आंसर कर नहीं पाते. आप फूलिश कर रहे क्या, पहले मैंगोस को 3 बोला अभी 4 क्यों बोल रहे. बोल स्टूडेंट ने कहा कि मेरा मम्मी ने आज लंच में मैंगो एप्पल दिया. सो सोच के उनके पास अभी 4 एप्पल्स आ गए. सो आंसर 4 होता था. सो हर एक ओपिनियन अलग अलग रहता मगर हर एक ओपिनियन का पीछे एक राज होता है. सो कभी हम नहीं सोचना हमारे व्यू पॉइंट करेक्ट है, हम जो सोचने का तरीका यही करेक्ट है. क्योंकि रिलेशंस का मेन कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन होता है ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग ही, ओपिनियन का डिफरेंस ही मेन होता है एक्चुअली. बट एक बार हमने कहा और फिर वापस भी नहीं ले सकते किसी को दुख दिया तो. सो हम सोचना पड़ेगा. और एक छोटा सा स्टोरी से फादर ने ट्रैवलिंग करे ट्रेन में उसके जो दो बच्चे रहते हैं ट्विन्स हैं और वो खेलते छोटा है खेलते खेलते और थोड़ा मिस्चिवस भी है और दूसरा ऑपोजिटों का लाइक सामान को भी इधर उधर करते रहते. ऑपोजिट पर्सन सोचते आ रहे फादर ने कुछ भी उनको संभाल रहे नहीं इतना गड़बड़ कर रहे और उन्हें कुछ नहीं बोल रहे बोल के सोचते. मगर फादर ने बताते कि उसका मदर ने शरीर छोड़ा है, अभी अभी अंतक्रिया करके वापस आ रहे हो, सो बच्चों को पता भी नहीं है मदर नहीं है अभी, देन ऑपोजिट पर्सन को लगता है कि अरे बहुत बैड फील होता है कि अरे हम ऐसे नहीं सोचना था, बच्चों को ऐसे नहीं बोलना था. सो हर एक सिचुएशन का एक रीजन रहता है एक्चुअली. सो ओपिनियंस हर एक ओपिनियन का रीजन रहता, क्योंकि थोड़ा बहुत रीजन हम चेक करें तो हर एक का जैसे पालना पोषणा किया, अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ एनी वन बेस्ड ऑन दैट वन, हर एक का ओपिनियन रहता है. एक रीजन एक होता है ओपिनियन का, और सेकंड है ओल्ड एक्सपीरियंसेस, हर एक का एक्सपीरियंसेस रहता, और तीसरा है हर एक का एक्सपोजर, जो जितना मैच्योरिटी है वो इतना एक्सपोजर है वैसे उनका ओपिनियंस रहता है, और सिचुएशंस एक्ट होता है, हर एक एक इन्फ्लुएंस में रहता है बेस्ड ऑन दिस रीजंस, लाइक कुछ सर्कमस्टेंसेस के आधार पर, पुराने संस्कार के आधार पर और एनवायरमेंट के आधार पर. सो हर एक का ओपिनियन रहता है. सो वी शुड नॉट थिंक लाइक मेरा ही व्यू पॉइंट करेक्ट है. हर एक का रेस्पेक्ट देना, हर एक ओपिनियन का रिगार्ड और रेस्पेक्ट देना पड़ता है. सो इन जनरल सेंस हम सोचे तो हर एक बॉडी का नो टू फिंगर प्रिंट्स कैन नॉट बी मैच्ड, ऐसे ही डीएनए सिस्टम, आयरिस रिकग्निशन, ऐसे मना हम ये देखे तो हमको एक सिखाते कि एवरीवन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड. इन द सेम वे आत्मा में भी हर एक संस्कार अपना अपना है, हर एक का व्यूज एंड आइडियाज अपना अपना रहते हैं. सो ये जानने से हम मना कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर रह सकते हैं. हार्मोनिक के एक प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स भी बोलते हैं कि इफ एनीवन स्टार्ट्स लाइक एक शुरू करते रिस्पॉन्सिबल लेना, रिलेशनशिप को ठीक करना, तुरंत ऑपोजिट पर्सन को भी वो अडेप्ट हो जाते, मना वो भी रिस्पॉन्सिबल लेना शुरू करते. एक पैराडॉक्स रूप में बताते, एक बार एक ऐसे हुआ कि दो फ्रेंड्स रूम में रहता है, एक फ्रेंड एक इनको एक फ्रेंड को एक को नीटनेस बहुत अच्छा रखता है, और दूसरे ने इज वेरी नॉट सो नीट, गंदा ही रहते. सो ऐसे छोड़ देते उठते ऐसे एंड नॉट सो क्लीन. ये तो एक सिस्टर ने एग्जांपल दिया, सो मैं बोलूँ. सो वो पर्सन ने सिस्टर को अप्रोच करते, सिस्टर ऐसे ऐसे सिचुएशन है, सो हम क्या कर सकते. सिस्टर ने वही जवाब दिया, आप रोज क्लीन करना, ठीक रखना. सो इतना सालों से मैं वही कर रहा हूँ, कुछ बेस्ट एग्जांपल हो सकते तो बोलना. देन सिस्टर ने एक बताते कि हर एक बार जब क्लीन करने समय आप क्या सोचते. सोचते कि यू नो मना कभी भी ऐसे गंद करते, नीटनेस नहीं रखते, ऐसे ऐसे बोल के सोचते क्लीन करते. मगर सिस्टर ने बोलते कि आप विशेषताओं को देखने के लिए ट्राई करो, इनके अंदर कुछ विशेषता है तो बताना. थोड़ा समय सोच के बताते कि हाँ इनके अंदर भी विशेषता है, उन्हें बहुत अच्छा कॉफी बनाते, मेरे को भी पिलाते, कॉफी देते, अच्छा वेरी गुड. देन और कुछ है ना, हाँ उन्हों फाइनेंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प करता है फाइनेंस समझाने में, ऐसा ओके. और कुछ है बोले तो हाँ, कभी कभी मुझे पैसे नहीं है तो भी मना घर से पैसा आने में देरी हो तो भी उन्हों हेल्प करता है मनी के रूप में, और फिर वापस पूछते भी नहीं देने तक, हो बहुत अच्छा है. सो जब भी हम अभी से जो जब भी रूम क्लीन करने समय साफ करने समय यही सोचो, अरे इतना अच्छा है, ऐसे विशेषताओं को देख के करे तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट पर्सन में परिवर्तन आ सकता है. सो एक दिन इनका बर्थडे था, सो दीदी को बोलते मैं आज सेंटर को आऊँगा. ओके, रूम को साफ सफाई करके मैं आ जाऊँगा बोल के बताते. और ऑफिस से लौटते ही रूम में देखे तो रूम एकदम फ्रेश क्लीन रखता है. और टेबल के ऊपर लिखा हुआ है दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट फॉर यू. सो इतना चेंज देखते. सो हम शुभ बोनस से हम रहे तो सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं. सो ऐसे हार्मोनी रिलेशंस को हार्मोनाइज करने के लिए ऐसे तरीका. सो हम हमारे अंदर भी ऐसे वैल्यूज को, जैसे सिस्टर ने बताया, वैल्यूज को डेवलप करना पड़ता है. कि मेनली मैं सोचता हूँ कि तीन वैल्यूज दया भाव, क्षमा और सहनता. सो जब हम रिलेशंस में क्षमा करना पड़ता है, माना वी डोंट नो द ओपिनियंस लाइक इन व्हाट वे दे आर टेकिंग द डिसीजन. सो हम फॉरगिव एंड मर्सी भी रहना और सहनता भी चाहिए, टॉलरेंस भी बहुत चाहिए. और इसके साथ साथ संतुष्टता भी, सरलता, नम्रता और पवित्रता. सो दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो टू क्रिएट हार्मोनी विस इज सम ऑफ द पॉइंट्स. एक 10 पॉइंट है हार्मोनी के लिए. टाइम हार्मोनी तो हार्मोनी हो जाएगा दादी के. सो टू क्रिएट हार्मोनी थोड़ा सा पॉइंट्स हैं. बात करना मगर दूसरों को भी सुनने का प्रयास करना. हम जब रिलेशंस में इम्बैलेंस हो तो द मेन रीजन फॉर कम्युनिकेशन बैग यही होता है कि रिलेशन ठीक नहीं. तो सो हम बात करते मगर दूसरों को सुनते कम है. सुनते मगर दूसरे तरीके से, माना रियली व्हाट दे आर सेइंग वी डोंट अंडरस्टैंड टेक इट बिकॉज वो इंटेंशन ही अलग रहता है ऑटोमेटिकली. माना ऐसे बताते कि एज यू सी सो यू लिसन. माना जैसे हम दृष्टिकोण रहते ना उतना ही सुनते. अच्छा उन्होंने ऐसा ही बोले, सोच एक सोच रहे तो जो भी उन्होंने बोलते ना उनका लिसनिंग बेस रहता है. सो कभी कभी डिसीशंस लेने समय और कुछ प्लानिंग करने समय हम ऐसे सुनते हैं कि वो डिसीशन और डिस्कशन में हमारा बात अप्रूव होना, हमारा बात वो समझ लेना ऐसे. मगर ऐसे नहीं ना, डिस्कशन माना ओपन माइंडेड से करना पड़ता है. सो एक बात ऐसे. सो और हर एक का पॉजिटिव क्वालिटीज को रिकॉल करना हार्मोनी के लिए, एक दूसरों का अच्छा क्वालिटीज को एक बार रिकॉल करना, विशेषताओं का देखना. और तीसरा है कुछ फ्यूचर प्लान करके दोनों उसमें प्लान करना पड़ता है, जो भी सिचुएशन को हार्मोनाइज करने के पहले. सो प्लान करके दोनों उसमें एंगेज रहना, वर्क टुगेदर, इसका विजन लाना. और टेक इनिशिएटिव, माना पहले पहले हम शुरू करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि रिलेशंस को ठीक करने के लिए. लाइफ इज सो शॉर्ट है, सो उन्होंने करे तो मैं करूँगा ऐसे नहीं. लेट गो वॉट एवर दे मे बी, लाइक वी हैव टू स्टार्ट लाइक वॉट कैन आई डू. सिचुएशन को हम पहले लेना पड़ेगा. सो कुछ डिसीशन लेने समय इंक्लूड करना, दोनों बात करके कुछ डिसीशन लेना होता है. और नर्चरिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड्स, शुभ भावना, शुभकामना रखना एक ऊपर. और एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, वी हैव टू थैंक फॉर एनीथिंग लाइक स्मॉल और बिग, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए. और एक्सपेक्टेशंस को कम करना, ऑलरेडी सिस्टर भी कवर किया बहुत सारे टॉपिक. सो एक्सपेक्टेशंस ही मेन रीजन है माना ये झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स के. सो जितना कम एक्सपेक्टेशंस है उतना अच्छा है. और मेडिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, काम डाउन ऑफ थॉट्स, सो समझ लेते हैं एक दूसरों का आइडियाज, वो किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वो उनका ओपिनियंस को हम समझने के चांस मिलता है. और स्पिरिट ऑफ सेवा, सेवा भी करने से क्या होता है, हमारा अंदर का सेल्फिशनेस वो थोड़ा कम हो जाते हैं सेवा में इन्वॉल्व होने से. सो ये पूरा ऑफ रीजंस लाइक हाउ वी कैन ब्रिंग ए हार्मोनी. एक लास्ट है कि लौकिक में देखे तो हमको कभी कभी फोन आता है, इतना पहले तो हमको मानते नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहते, मगर बहुत दिन के बाद ऐसे फोन आ जाते, थोड़े बात करने के लिए इंटरेस्ट रहते, कुछ टाइम देने के लिए पूछते, मतलब हमको समझ में आता है कुछ डिसहार्मोनी है उनके रिलेशंस में, इसीलिए थोड़ा हमारे से बात करना अच्छा लगता है उनको. मतलब मैं सोचता हूँ कि बाहर दुनिया में इतना झगड़ा है, उस दिन भाई साहब भी बता रहे कि मेन रीजंस होता है लैंड, लेडी एंड मनी. सो मेन रीजंस है दुनिया में इम्प्यूरिटी लगता है. सो जब हम प्योरिटी को धारण करते ना, ऑटोमेटिकली ऑल द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व. थैंक यू. ओम शांति.
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार. सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का